الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته الله تعالى شانه ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یعنی ایمان لے آئے ثم استقاموا پھر وہ جمی پھر وہ سٹیڈ فاسٹ رہے پھر انہوں نے استقامت کی راہ اختیار کی تو ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہے اور ایمان کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا کیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم میں مبتلا نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے اگر دو کام کر لیں نمبر ایک ایمان لے آئیں نمبر دو اس ایمان پر رہیں موت تک اور ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں تو خوف اور غم ان کو چھوئے گا نہیں خوف کا ماحول ہوگا چاروں طرف غم کا ماحول ہوگا چاروں طرف ہو سکتا ہے لیکن خوف اور غم ان کو نہیں چھوئے گا ان کے قریب نہیں جائے گا دوسرے لوگوں کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ خوف کے ماحول میں ہے لہذا اس پر خوف ہوگا یہ غم کے ماحول میں ہے اس لیے اس پر غم ہوگا لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایسے بندے کو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے کہ ربنا اللہ پورے یقین کے ساتھ اور اس کے بعد اس پر جمتا ہے اور اس ایمان کے جتنے تقاضے ہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس ایمان کے نتیجے میں جن کاموں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کاموں کو کرتا ہے और जिन कामों से बचने के लिए कहते हैं उन कामों से बचता है। तो खौफ का माहौल पैदा हो सकता है, गम का माहौल पैदा हो सकता है, मगर उसके दिल में खौफ नहीं होगा, उसके दिल में गम नहीं होगा। बड़े से बड़े खतरे के वक्त भी वो दिल में खौफ महसूस नहीं करेगा, और बड़ी से बड़ी चीज के चले जाने पर उसका दिल गम महसूस नहीं करेगा। और ये वादा अल्लाह ताला शानहु का इस दुनिया के लिए भी है और मरने के बाद की जिंदगी के लिए भी है कि खौफ नहीं होगा, गम नहीं होगा। मरने के बाद की जिंदगी में खौफ भी नहीं होगा और खौफ का माहौल भी नहीं होगा, गम भी नहीं होगा, गम का माहौल भी नहीं होगा। दुनिया में खौफ का माहौल हो सकता है, गम का माहौल हो सकता है, लेकिन खौफ और गम नहीं होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। इन्नल लदीन कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, बस दो काम करने हैं, ईमान, और ईमान के बाद ईमान पर बाकी रहना मौत तक, और ईमान के तकाजों को पूरा करना। और ईमान के तकाजे क्या हैं? अल्लाह ने जिन कामों को करने के लिए कहा उन कामों को करें, और जिन कामों से बचने के लिए कहा उन कामों से बचें। और इसी को इस्तिकामत कहते हैं, मजबूती से जमना, स्टेडफास्ट रहना, ईमान पर भी और ईमान के तकाजों पर भी, ईमान पर भी और आमाले सालेहा पर भी, ईमान पर भी स्टेडफास्ट रहना कि ईमान में कोई खलल वाकई ना हो, अकीदे में कोई खलल वाकई ना हो, जान चली जाए कोई परवाह नहीं, ईमान में खलल नहीं होगा। लोग बॉयकॉट करें, लोग एलियनेट करें, हमें खानदान से अलहिदा कर दें, बस्ती से अलहिदा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मजबूत रहते हैं ईमान पर, ईमान किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए मार खानी पड़े, उसके लिए सजा सहनी पड़े, उसके लिए कंकरों पर, पत्थरों पर घसीटा जाए, गरम गरम रेत पर लिटाया जाए, उसके लिए सीने पर पत्थर रखा जाए, आग में जलाया जाए, उसके लिए एक एक करके उज्व काटा जाए, कान काटा गया, दूसरा कान काटा गया, नाक काटी गई, होंठ काटा गया, दूसरा होंठ काटा गया, एक उंगली काटी गई, दूसरी उंगली काटी गई, कुछ भी हो जाए ईमान नहीं छोड़ेंगे, ईमान पे मजबूत हर हाल में, और ईमान के तकाजों पर भी मजबूत। अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवादु मना फरमाते हैं कि ये रस्म नाजायज है, ये रिवाज नाजायज है, तो दूर रहता है। चाहे पूरी फैमिली, चाहे पूरा खानदान उन्हें अलग कर दे, उनसे बॉयकॉट कर दे, लोगों की तानो तशनी को बर्दाश्त करता है, लोगों के इस्तेहजा को बर्दाश्त करता है, लोगों के मजाक उड़ाने को बर्दाश्त करता है, इसको कहते हैं इस्तिकामत। ईमानियात और अकाइद पर भी मजबूत रहता है, और उसके अलावा अल्लाह के डूज और डोंट्स के बारे में भी मजबूत रहता है। यह है इस्तिकामत। और इस इस्तिकामत के लिए अल्लाह ताला शानहु ने अपने बंदों को एक अनमोल नेमत अता की है। जब बंदा उस अनमोल नेमत से फायदा उठाता है तो उसे ईमान में भी इस्तिकामत नसीब हो जाती है और आमाल में भी इस्तिकामत नसीब हो जाती है। और वो अनमोल नेमत है हिम्मत, 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 बुलंद हौसला। डिटर्मिनेशन, हिम्मत का माना डिटर्मिनेशन। एक तो उर्दू का लफ्ज है हिम्मत, हिम्मत का माना है करिज, करिज वो खास है करिज। अरबी के अंदर जब लफ्ज हिम्मत बोला जाता है तो उसके लिए कोई एक लफ्ज नहीं मिलता कि जो उसको अदा कर सके। एम्बिशन, एंथ्यूजियाज्म, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, उसका हौसला बहुत बुलंद हो कि मैं ये काम भी करना चाहता हूं और ये काम भी करना चाहता हूं और ये काम भी करना चाहता हूं और ऐसा भी करना चाहता हूं और ऐसा भी करना चाहता हूं। दीन के मामले में हिम्मत हो उसके पास, और अल्लाह ने हिम्मत हरेक को दी है, हिम्मत हरेक के पास है। मुस्लिम के पास भी हिम्मत है, गैर मुस्लिम के पास भी हिम्मत है, दीनदार के पास भी हिम्मत है, बेदीन के पास भी हिम्मत है। अगर कोई इस अल्लाह की दी हुई अनमोल नेमत हिम्मत का सही इस्तेमाल करता है तो आली हिम्मत हो जाता है, आली हिम्मत, उसकी हिम्मत बहुत बुलंद हो गई, अब यह बहुत कुछ कर जाएगा। और अगर इस अनमोल नेमत का सही इस्तेमाल नहीं करता तो यह कम हिम्मत, ये पस्त हिम्मत हो जाता है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर थोड़ा इस्तेमाल करता है, थोड़ा नहीं तो एक कम हिम्मत, ये दरमियान वाला शख्स है, तो एक पस्त हिम्मत है कि उसने अपनी जो हिम्मत है, जो डिटर्मिनेशन का पावर है, जो रेजोल्यूशन का पावर है, उसे मुर्दा कर दिया। नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, हज करने के लिए जाना है मगर बहुत मुश्किल, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मैं बीमार रहता हूं, मैं कमजोर हूं, एक नया मुल्क, यहां से वहां तक का सफर, वहां लाखों आदमी होते हैं, इल्म भी मेरे पास कम है, तवाफ कैसे करूंगा, सही कैसे करूंगा, रमी कैसे करूंगा, इसने अपनी हिम्मत को पस्त कर दिया। और एक आली हिम्मत है, माजूर है फिर भी हज करने के लिए जाने के लिए तैयार, अपने रिश्तेदारों को कहता है, अपने बेटों को कहता है कि मुझे ले चलो, यह आली हिम्मत। और इसी की एक शाख जो है वो हिम्मत, बहादुरी और करीज है, इसी की है, मगर ये ज्यादा वसी माने में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया में चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे अच्छा शख्स हो चाहे बुरा शख्स हो, चाहे उसने दुनियावी काम किया हो या दीनी काम किया हो, जिसने जो भी तरक्की की वो इस हिम्मत के नतीजे में। लोगों ने हिम्मत की तो चांद पर चले गए, एक रॉकेट में बैठना और रॉकेट में बैठ करके फिजा में जाना, पता नहीं चांद कहां होगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत के ना ये काम मैं करूंगा, एम्बिशन, डिटर्मिनेशन, एंथ्यूजियाज्म, रेजोल्यूशन। अब हम में से किसी को कहे तो शायद हम लोग तो रॉकेट में बैठने के लिए भी तैयार ना हो, हिम्मत की तो चांद पे चले गए, हिम्मत की तो हिमालय पहाड़ पर चढ़ गई, कितना ऊंचा पहाड़, लेकिन हिम्मत करने वालों ने हिम्मत से काम लिया, चढ़ गए। लोग हिम्मत करते हैं तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक समंदर में तैर करके पहुंच जाते हैं, हिम्मत। दुनिया में कितने माजूर हैं जिन्होंने हिम्मत की, रिजोल्व किया, डिटरमिन, नहीं ये काम मुझे करना है, टारगेट सेट करते हैं, ये काम मुझे करना है। पहले तो एक तो है फॉल्स एम्बिशन, ये काम मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, नहीं फॉल्स एम्बिशन नहीं, एम्बिशन कि मुझे ये काम करना है, और फिर साथ में रेजोल्यूशन और डिटर्मिनेशन, ये है पूरी हिम्मत। एक एम्बिशन, एक टारगेट सेट किया, और टारगेट सेट करने के बाद फिर उसके लिए रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म और उसके साथ वो काम किया फिर। तो कितने माजूर लोग हैं जिन्होंने हिम्मत से काम लिया तो कहां से कहां पहुंच गए, कितने गरीब और फकीर लोग हैं जिन्होंने हिम्मत से काम लिया तो कहां से कहां पहुंच गए, जितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिन्होंने हिम्मत से काम लिया तो कहां से कहां पहुंच गए। एक परिंदे को देखिए, छोटा सा परिंदा है, वो अपना घोंसला बनाता है, उसके पास कार नहीं होती, उसके पास कोई व्हीकल नहीं होता, उड़ करके जाता है एक तिनका लेकर आता है, उड़ करके जाता है दूसरा तिनका लेकर आता है, उड़ करके जाता है तीसरा तिनका लेकर आता है, उड़ करके जाता है चौथा तिनका लेकर आता है, कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो परिंदा हिम्मत से काम लेता है। और ये हिम्मत हमेशा, जो भी हिम्मत से काम लेगा उसे कामयाबी तक पहुंचाती है। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि ये एक अनमोल दौलत है जो अल्लाह ताला शानू ने दी है, हिम्मत। हिम्मत से इंसान बड़े बड़े कामों को कर गुजरता है, और जब हिम्मत नहीं होती तो आसान से आसान काम नहीं हो सकता। जब हिम्मत इंसान पस्त कर लेता है अपनी, तो फिर वो सुस्त हो जाता है, और जहन उसका ऐसा बन जाता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। एक बच्चा हाफिज हो जाता है पूरे कुरान का, ये हिम्मत से काम लेता है, और दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। हालांकि जो हाफिज हुआ है वो कुन जहन है, और जो हाफिज नहीं हुआ है वो बहुत ब्राइट है, लेकिन ये पहले वाले के पास एम्बिशन था, एंथ्यूजियाज्म था, और उसने डिटर्मिनेशन के साथ, रेजोल्यूशन के साथ इस काम को किया तो हाफिज बन गया। साइंटिस्टों को देखिए, हिम्मत से काम लेते हैं। अभी ये COVID-19 की बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो डॉक्टर हजरात जो हैं उसका वैक्सीनेशन ढूंढ रहे हैं। अब एक वायरस जिसका वजूद ही नहीं था, उसका वजूद हो गया, अब उसको समझना, समझकर उसके मुताबिक वैक्सीनेशन तैयार करना, और पता नहीं कि कितने महीनों के बाद तैयार होगा, लेकिन जितनी भी दवाएं तैयार होती है हिम्मत के नतीजे में तैयार होती है। इंसान हिम्मत से काम लेता है तो पहाड़ों पर चढ़ जाता है, हिम्मत से काम लेता है तो पहाड़ों को खोदकर उसमें से सुरंग और टनल बना लेता है, हिम्मत से काम लेता है तो समंदर में टनल बना लेता है, यूरो टनल, हिम्मत से काम लेता है तो ऐसा हवाई जहाज तैयार करता है जो उड़ने लगता है कई सौ पैसेंजरों को लेकर। हिम्मत मेरे भाइयों बहुत बड़ी चीज है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये सुराखों में रहते हैं, चूंटियां हैं, चूंटियां एंट्स, तो जब बारिश का मौसम होता है तो अगर चूंटियां बारिश के मौसम में बाहर रहे, जब बारिश बरस रही है तो बारिश आएगी और बहा ले जाएगी, तो ये अपने सुराखों से बाहर नहीं निकलते, बहुत अंदर से सुराख होते हैं जमीन में, उसमें बैठी रहती हैं ये मक्खी, ये चूंटियां, और उन महीनों के लिए ये गर्मी के मौसम में बाहर निकलती हैं, और बाहर निकल करके गिजा खाती पीती भी है और गिजा को का जखीरा करती है, और ये बहुत ही मुनज्जम तरीके से करती है। जो एनिमल किंगडम को स्टडी करते हैं उन्होंने इस पर जो तफसील लिखी है तो आदमी हैरान हो जाता है। तो ये जो चूंटियां जखीरा करती हैं अपनी गिजा को, क्या करती है, कितने दूर दूर तक जाती है और एक एक छोटा जर्रा मुंह में लेकर के आती है और अपनी जगह पे रख के फिर जाती है। ये पूरी फौज चूंटियों की, ये अलग अलग खानदान होते हैं, पूरा पूरा खानदान इस काम में लगा हुआ होता है। देखो चूंटी अपनी बारिश के मौसम के लिए कितनी गिजा जमा कर लेती है कि उसको बाहर निकलने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो हिम्मत जो है, हिम्मत, हिम्मत उसे बुलंद रखना चाहिए, हिम्मत को पस्त नहीं होने देना चाहिए। इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, ईमान कबूल करने के लिए भी, और इस्तकामू, फिर उस ईमान पर साबित कदम रहना, और आगे आमाले सालेहा को इख्तियार करना, गुनाहों से बचना, फराइज और वाजिबात को अदा करना, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत अल्लाह ने हर इंसान में रखी है, हिम्मत अल्लाह ने हर जानवर में रखी है, लेकिन उनको ईमान और आमाले सालेहा का मुकल्लफ नहीं बनाया। लेकिन उनके जितने काम है, उनकी जिंदगी में तरक्की के जितने काम है, बका के जितने काम है, हिफाजत के जितने काम है, वो इसी हिम्मत को इस्तेमाल करके वो करते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालू ने हमें मुकल्लफ बनाया है, तो हमें बका के लिए, हमारी हिफाजत के लिए और आखिरत बनाने के लिए भी इसी हिम्मत को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हजरत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहिब रहिमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सुलूक के लिए हिम्मत जो है, सुलूक के लिए हिम्मत, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए कि सुलूक का माना है अल्लाह तक पहुंचाने वाले रास्ते को तय करना, उस रास्ते को तय करना जो अल्लाह जल्ल जलालुहु वअम्मन वालुहु की रिजा को सिक्योर करता है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए अल्लाह ने जिन चीजों को करने का हुक्म फरमाया है उनको करना पड़ता है, और जिन चीजों से बचने का हुक्म फरमाया है उनसे बचना पड़ता है। तो आप सुलूक के लिए कह दो, दीन के लिए कह दो, आखिरत के लिए कह दो, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ये हिम्मत। बगैर हिम्मत के इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता, बगैर हिम्मत के इंसान फराइज को बजा नहीं ला सकता, बगैर हिम्मत के वाजिबात को अदा नहीं कर सकता, बगैर हिम्मत के सुनन मुस्तहबात और नवाफिल का वजूद नहीं होगा, बगैर हिम्मत के गुनाहों से और मकरूहात तहरीमिया से नहीं बच सकता। हिम्मत चाहिए। और उसके दूसरे अल्फाज में यूं भी कहा जा सकता है कि बगैर हिम्मत के इंसान जहन्नम से नहीं बच सकता। इसलिए कि अपनी हिम्मत को इस्तेमाल नहीं करेगा तो अल्लाह ताला शानहू ने जिन कामों को करने का हुक्म फरमाए उन कामों को नहीं कर सकेगा, जिन कामों से बचने के लिए हुक्म फरमाए उन कामों से नहीं बच सकेगा। इसलिए हमें कम हिम्मत भी नहीं होना है और पस्त हिम्मत भी नहीं होना है, हमें आली हिम्मत होना है, बुलंद हिम्मत होना है। जो बुलंद हिम्मत वाला होता है वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर गुजरता है, और जो पस्त हिम्मत होता है वो आसान से आसान काम को भी नहीं कर सकता। हजरत हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दो पस्त हिम्मत आदमियों का एक किस्सा लिखा है। देखिए, दो पस्त हिम्मत आदमी थे, हिम्मत बिल्कुल पस्त, और हिम्मत पस्त तो फिर कसल और सुस्ती आ जाती है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक लेटा हुआ था और एक बैठा हुआ था, और जो लेटा हुआ था उसके सीने के ऊपर एक फल था छोटा सा, जो बेरी के दरख्त से ऊपर से गिरा हुआ था, बेरी के दरख्त के नीचे लेटा हुआ था तो उस पर से गिरा तो सीने के ऊपर आकर के टिक गया। लेकिन हिम्मत इतनी पस्त कि हाथ से उस फल को लेकर के मुंह में डाले, इसके लिए वो तैयार नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे, मैं नहीं कर सकता। हमें ये अजीब लगेगा लेकिन होता है ऐसा। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बिस्तर में पड़े रहते हैं और घर में अपनी अम्मी से कहते हैं कि मां मुझे पानी दो, अम्मी कहते तो उठकर ले ले, नहीं मैं नहीं उठ सकता, तुम मुझे पानी दे दो। पस्त हिम्मत, एक गिलास पानी नहीं ले सकते। जो हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो एक लेटा हुआ था, दूसरा उसका साथी पड़ोस में बैठा हुआ था, और वहां से एक घोड़े सवार बड़ी तेजी के साथ किसी तरफ जा रहा था तो इसने उसे पुकारा कि ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, ये जो लेटा हुआ था उसने। तो घोड़े सवार जो है वो रुका, कहा कि जरा इधर करीब आओ। वो करीब गया, कब जी क्या बात है? तो कही मेरे सीने के ऊपर जो फल है वो मेरे मुंह में जरा आप रख दीजिए। तो घोड़े सवार को किसी जगह पर पहुंचना था तो उसने एक चाबुक रसीद किया उसको जो लेटा हुआ था उसको, और कहा मेरा खामोखा तूने वक्त बर्बाद किया, मुझे रोका, मुझे बुलाया, घोड़े से नीचे उतारा, तेरे करीब आया, इतने काम के लिए तुझसे नहीं हो सकता, अपने हाथ से उठा करके मुंह में रख दे। और फिर ये कहा कि और अगर तुझसे नहीं हो सकता था तो ये तेरे पड़ोस में जो तेरा दोस्त बैठा हुआ था इसे कह देता। तो कहा कि इसे कहा मगर ये इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुमको रोकना पड़ा। कभी तू क्यों ये काम करने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ है, फल उठा करके उसके मुंह में रख देता। तो उसने कहा कि एक दिन मैं इसी तरह लेटा हुआ था और एक कुत्ता यहां से गुजरा और कुत्ता रुक गया और मेरे ऊपर पेशाब करने लगा, टांग उठा करके मेरे ऊपर पेशाब करने लगा। तो वो इतना सुस्त था कि वो पेशाब जब कुत्ता कर रहा है तो खुद कुत्ते को हटाने के लिए या खुद हटने के लिए तैयार नहीं। तो क्या मैंने इसको ये कहा कि इस कुत्ते को हटा? तो क्या उस वक्त इसने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। ये लतीफा हमें मालूम होता है, लेकिन इस किस्म की चीजें दुनिया में होती हैं। जब अल्लाह जल्ला जलालुहु आम्मन वालुहु की दी हुई इस अनमोल नेमत को कोई इस्तेमाल न करे, जिस्म कितना अल्लाह ताला शानहु ने हमें अच्छा दिया है, एक आदमी नकलो हरकत न करे, इसका ख्याल न रखे, इसका लिहाज न रखे, एक ही जगह पर बैठा रहे तो ये बदन जो है फिर मुतहरिक नहीं रहेगा। तो इसी तरह अंदर ये हिम्मत है ये भी बर्बाद हो जाती है, इसलिए हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। बगैर हिम्मत के सिर्फ दुआओं से भी कुछ नहीं होता। हजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अली से उनके जमाने के बंबई के एक सेठ साहिब ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला शानहु मुझे हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। तो हजी साहिब रहमतुल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया, उससे वाकिफ थे, हो सकता है हजरत का मुरीद हो। तो हजरत ने फरमाया कि एक शर्त पर दुआ करता हूं। कहा कि जी हजरत, फरमाए क्या शर्त है? तो कि इस शर्त पर दुआ करता हूं कि जिस दिन बंबई से जद्दा के लिए हज के जमाने में जहाज रवाना हो रहा हो उस दिन तुम मुझे अपने ऊपर पूरा काबू दे दो, पूरा कंट्रोल दे दो अपने ऊपर उस दिन, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तुमको हज बैतुल्लाह नसीब करे। उसने कहा इससे क्या होगा? तो कहा इससे यह होगा कि जिस दिन यहां से जहाज रवाना हो रहा होगा उस वक्त मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर जहाज में बिठा दूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम यहां तिजारत में लगे रहो और मुझसे कहो कि दुआ करो। तो दुआ के साथ हिम्मत भी चाहिए, और हिम्मत से जो है वो बड़े बड़े काम होते हैं। हमें जो है हिम्मत करनी है और हिम्मत को इस्तेमाल करके नफ्स को काबू करना है, नफ्स का मुकाबला करना है इसी हिम्मत को इस्तेमाल करके। एक फैसला कर लेना है, एम्बिशन हो, डिटर्मिनेशन हो, एंथ्यूजियाज्म हो, बुलंद हौसला हो, आली हिम्मत हो, आली अज्म हो कि कुछ भी हो जाए अल्लाह जल्ल जलालहु आम मनवा लो कि हुक्म को पूरा करना है, उसके लिए नफ्स को कुर्बान करना पड़े तो नफ्स को कुर्बान करेंगे और हमारी दूसरी कोई चाहत कुर्बान करनी पड़े तो उसे कुर्बान करेंगे। एक बुजुर्ग थे, वो बैठे हुए थे और बैठे हुए ये कह रहे थे कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, फिर मैं तेरा हुक्म क्यों मानूं? तो लोगों ने घेर लिया उनको, उनको पता नहीं था कि ये कोई अल्लाह वाले हैं, कि तो कुफरिया कलिमा है कि अल्लाह ताला शानहू कह रहे हैं कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा फिर मैं तेरा हुक्म क्यों मानूं। लोगों ने घेर लिया कि आप क्या बक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नफ्स इस वक्त मुझे गुनाह के लिए आमादा कर रहा है, तो मैं हिम्मत से काम ले रहा हूं उसके मुकाबले में। اور ہمت سے کام لے کر کے مقابلہ کرتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا تھوڑا ہی ہے اور میں تیرا بندہ تھوڑا ہی ہوں کہ تیرا حکم مانوں. اس طرح جم جائے بندہ کہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے جان چلی جائے, جان نہیں جائے گی لیکن جان چلی بھی جائے, لیکن ہم اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو یہ ہمت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کو استعمال کرو. طریقہ اس کا یہ ہے, دیکھو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ہمت کرتے ہیں تو صبح 1:30 بجے سے لے کر شام کو 9 بجے تک بغیر کچھ کھائے پیئے ہم دن گزار سکتے ہیں, اور اس بھوک کی حالت میں, کمزوری کی حالت میں تلاوت کتنی کرتے ہیں, نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, عبادتیں کتنی کرتے ہیں. یہ ہمت ہی تو ہے, یہ ہمت کا کرشمہ ہے. عام دنوں میں عشاء کی 4 رکعت فرض ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے, اور رمضان المبارک میں 4 سنت پڑھتے ہیں, 4 فرض پڑھتے ہیں, 2 سنت پڑھتے ہیں, 2 نفل پڑھتے ہیں, 20 رکعت تراویح کی پڑھتے ہیں, پھر وتر پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد بھی لوگ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور عبادتوں میں لگے رہتے ہیں. یہ ہمت ہے, ہمت. ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, ہم ایک ایمبیشن ہمارا بنا لیتے ہیں کہ رمضان میں مجھے یہ کام کرنا ہے, اتنے ختم کرنے ہیں, اتنے سپارے پڑھنے ہیں, اور پھر ہم ڈٹرمینیشن, انتھیوزیازم اور ریزولوشن کے ساتھ رمضان کو گزارتے ہیں تو کتنے کام ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو شاپنگ سینٹر تک جانے میں اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں, وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے عمرے کر لیتے ہیں, کتنے طواف کر لیتے ہیں. یہ ہمت کا کرشمہ ہے. کچھ لوگوں کو آخرت کا خوف اچانک دل میں پیدا ہوتا ہے اور ڈرگ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اچانک چھوڑ دیتے ہیں, ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے ڈرگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمت. کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور کئی سالوں کے عادی ہوتے ہیں, انہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو تو کینسر ہو گیا ہے اور اگر سگریٹ سے نہیں رکے تو موت کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. کہاں سے آئی یہ طاقت سگریٹ چھوڑنے کی جو پہلے نہیں چھوڑ سکتے تھے. ہمت. تو گناہوں کے سلسلے میں بھی ہمیں یہی کرنا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے جس کام کو کرنے کا حکم فرمایا ہے, اس ہمت کو, ڈٹرمینیشن کو, اس ریزولوشن کو, اس ایمبیشن کو, انتھیوزیازم کو, اس کو جو بھی کہیں, اس کو استعمال کر کے کر لینا ہے. اور جو جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا ہے, جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچنا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا, تصوف کا یہی خلاصہ ہے کہ نفس جب اللہ تعالی شانہ کی کسی طاعت میں سستی کرے تو ہمت سے کام لے کر اسے مجبور کر کے اس طاعت پر لانا, اور کسی گناہ سے بچنے میں سستی کرے تو ہمت سے کام لے کر, یہ ہمت سے کام لے کر میری طرف سے اضافہ کر رہا ہوں, تو ہمت سے کام لے کر نفس کا مقابلہ کر کے اسے گناہ سے بچانا, یہی ہے تصوف, اور اسی کا نام ہے مجاہدہ, اور اسی سے دین کی حفاظت ہے اور اسی سے دین میں ترقی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ایک اور ایک مثال دے دوں کہ ایک مریض پڑا ہوا ہے بستر میں, ابھی اس کا آپریشن ہوا ہے, اور اس کے لیے یوں کر کے پانی لینا بھی مشکل ہوتا ہے, ایک گلاس پانی لینا بھی مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہمت ہے, اس نے ایسا سمجھا ہے کہ میری ہمت اتنی ہی ہے. اب ہوا یہ کہ یہ مریض گھر میں اکیلا تھا, سب گھر سے گئے ہوئے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی. یہ مریض جو ہے اپنی جتنی ہمت ہے اس ہمت کو اب استعمال کرے گا, اور کسی طرح بستر پر سے نیچے گرے گا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالے گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اور مثال کہ سست طالب علم ہے, پڑھنے میں اسکول کا ہو, کالج کا ہو, مدرسے کا ہو, بالکل نہیں پڑھنے کے لیے بیٹھتا, لیکن امتحان آ جاتے ہیں تو رات دن اب پڑھ سکتا ہے. ہمت, ہمت سے کام لینا ہے ہمیں. اللہ تعالی شانہ کی یہ دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہمیں اس کے استعمال کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.